आज हम चीनी राजसत्ता में सुधार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे। शासन की विकृत दशा। 19वीं सदी के मध्य भाग में चीन के मंचू शासन की क्या दशा थी, इस पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है। पेकिंग की केंद्रीय सरकार बहुत निर्बल थी और आवागमन के साधनों की उन्नति के अभाव में उसके लिए यह सुगम नहीं था कि वह विशाल चीनी साम्राज्य के विविध प्रांतों व अधीनस्थ राज्यों पर अपने नियंत्रण को भली भांति कायम रख सके। प्रांतों के सूबेदार इस अव्यवस्था से लाभ उठाकर सम्राट की सरकार के आदेशों की अपेक्षा करने में संकोच नहीं करते थे। चीनी सरकार के पास आमदनी की भी सदा कमी रहती थी। राजकीय करों के दर में वृद्धि कर सकना सुगम नहीं था और टटकर की दरों में परिवर्तन तो तभी संभव था जब विदेशी राज्य उससे सहमत हों। धन की कमी के कारण चीन के लिए यह संभव नहीं था कि वह अपना आर्थिक विकास करने के लिए नए यंत्रों व रेलवे आदि को प्राप्त कर सके और अपनी सेना को नए ढंग से अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर सके। यही कारण है कि विदेशी राज्यों का मुकाबला कर सकना चीनी सरकार के लिए संभव नहीं था और चीन जापान युद्ध तथा बॉक्सर विद्रोह के अवसरों पर उसे विदेशी राज्यों के सम्मुख नीचा देखना पड़ा था। मंचू सम्राट इतने निर्बल थे कि उनके लिए इन समय चीन को संभालना संभव नहीं रह गया था और वे इसमें पूरी तरह असफल साबित हुए थे। आइए अब हम सुधार के लिए हुए आंदोलनों पर चर्चा करते हैं। पर चीन में ऐसे विचारशील लोगों की कमी नहीं थी जो अपने देश की इस दुर्दशा को अनुभव करते थे। किस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन चीन में शुरू हुए और किस प्रकार अनेक लोगों ने मंचू सरकार में सुधार का प्रयास किया, इसका उल्लेख हम करेंगे। सुधारवादी लोगों के प्रभाव में आकर सम्राट क्वांग हसु ने 1898 में अनेक ऐसी आज्ञाएं प्रकाशित की थी जिनका उद्देश्य चीन में शासन में सुधार लाना था, पर उसे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं मिल सकी। राजमाता तीसी हिसी का आश्रय पाकर सुधार विरोधी लोग प्रबल हो गए और सम्राट क्वांग हसु को कैद कर राजमाता को शासन सूत्र को अपने हाथ में दे दिया। सुधार का आंदोलन समाप्त हो गया और राजमाता के नेतृत्व में चीन का पुराने ढंग का एक तंत्र व विकृत शासन यथावत जारी रहा। बॉक्सर विद्रोह के बाद चीन को विदेशी राज्यों के सम्मुख जिस प्रकार नीचा देखना पड़ा था, उसके कारण राजमाता ने भी यह अनुभव किया कि शासन सुधार किए बिना चीन की उन्नति संभव नहीं है। राजमाता यह मानने को तैयार नहीं थी कि 1898 के सुधारों का विरोध कर उसने कोई गलती की थी। उसका कहना था कि 1898 में सुधारवादियों का यह प्रयत्न था कि मंचू शासन का सर्वथा अंत कर एक नई क्रांतिकारी सरकार की स्थापना की जाए, पर वह यह स्वीकार करती थी कि समय की गति को ध्यान में रखते हुए अब यह आवश्यक हो गया है कि मंचू राजवंश की सत्ता और चीन की प्राचीन मर्यादा को कायम रखते हुए शासन में ऐसे परिवर्तन होने चाहिए जो चीन को उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाने में सहायक साबित हों। राजमाता की इस नीति में उनका प्रधान सहायक युआन शिकाई था जो 1898 के बाद निरंतर उनका साथ दे रहा था। सुधारों का सूत्रपात। युआन शिकाई की सहायता से राजमाता ने शासन सुधार के कार्यों की शुरुआत की। सबसे पहले सेना के पुनः संगठन पर ध्यान दिया गया। 1901 में एक राजाज्ञा प्रकाशित की गई जिसके अनुसार सेना का नए ढंग से संगठन करने की व्यवस्था की गई। प्रांतों के विविध सूबेदार जो अपनी पृथक सेनाएं रखते थे, उनके स्थान पर अब चीन की एक राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया गया और यह निश्चय किया गया कि चीन की राष्ट्रीय सेना में 1912 तक 36 डिवीजनों का संगठन कर लिया जाए। रूस और जापान के युद्ध के समय इस प्रकार की सुसंगठित सेना की आवश्यकता को अत्यंत उग्र रूप से अनुभव किया गया था। 1905 में चीन की पुरानी परीक्षा पद्धति का अंत कर देने के लिए आज्ञा जारी की गई। इस परीक्षा पद्धति के स्वरूप को हम पहले ही बता चुके हैं। चीन में विविध राजकीय पदों पर जिन व्यक्तियों को नियत किया जाता था, उनके लिए इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना आवश्यक होता था। इन परीक्षाओं के पाठ्य विषय में आधुनिक युग के ज्ञान विज्ञान को कोई स्थान नहीं था। प्राचीन ग्रंथों और धर्मशास्त्रों में प्रवीण होना ही इन परीक्षाओं के लिए आवश्यक होता था। इसी कारण चीन के सरकारी कर्मचारी नए ज्ञान विज्ञान से सर्वथा अपरिचित होते थे। उनके लिए समय के अनुसार अपने को परिवर्तित कर सकना संभव नहीं होता था। विदेशियों से शिक्षा प्राप्त करके जो लोग इस समय चीन वापस आ रहे थे, वे सरकारी कर्मचारियों की संकीर्ण मनोवृत्ति को अनुभव करते थे, और यही कारण है कि 1905 में सदियों पुरानी परीक्षा पद्धति का अंत किया गया, और अब उन लोगों के लिए भी चीन में सरकारी पद प्राप्त करना संभव हो गया जो प्राचीन ग्रंथों से अपरिचित होते हुए भी नए ज्ञान विज्ञान से भली भांति परिचित थे। 20वीं सदी के शुरू में चीन के नवयुवकों में यह प्रवृत्ति बहुत प्रबल हो गई कि वे अमेरिका आदि विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करें। रूस जापान के युद्ध में जापान के विजयी होने पर चीन में सुधारवादी आंदोलन को बहुत बल मिला। यदि जापान नए ज्ञान विज्ञान को अपनाकर और अपने देश के शासन को आधुनिक ढंग से संगठित करके इतना शक्तिशाली हो सकता है कि रूस जैसे विशाल यूरोपियन देश को हरा सके, तो क्या कारण है कि चीन भी उसी मार्ग का अनुसरण कर अपने को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त नहीं कर सकता। यह विचार चीनी लोगों में बहुत प्रबल हो गया। राजमाता और उनके पार्श्वचर भी इस विचार से प्रभावित हुए, और इसी कारण उन्होंने शासन की पद्धति में सुधारों की शुरुआत की। 1905 में एक मिशन इस उद्देश्य से पश्चात देशों में भेजा गया ताकि वह वहां के विविध देशों की शासन पद्धतियों का अनुशीलन कर यह प्रस्तावित करे कि चीन की दशा और परिस्थितियों के अनुसार कौन से सुधार उसके लिए उपयोगी है। आइए अब हम शासन संबंधी सुधार पर चर्चा करते हैं। 1908 में पेकिंग की मंचू सरकार ने एक घोषणा द्वारा उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार वह चीन के शासन में सुधार के लिए तैयार है। यह सिद्धांत इस प्रकार थे। पहली सिद्धांत थी, मंचू राजवंश की सत्ता और शक्ति को अक्षुण रखा जाए। शासन में जो सुधार किए जाएं वे सम्राट की इच्छा अनुसार और उसी की आज्ञा से हों। मंचू राजवंश का शासन चीन में सदा स्थिर रहेगा और उसके आधिपत्य एवं अधिकारों में किसी प्रकार से कमी नहीं आने पाएगी। दूसरी सिद्धांत थी, सुधार धीरे धीरे किए जाए। पहले प्रांतों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हो, पुलिस का पुनः संगठन किया जाए, देश के कानूनों को व्यवस्थित किया जाए, बकायदा जनगणना की पद्धति जारी की जाए और शिक्षा के प्रसार का प्रयत्न हो। चीनी सरकार के लिए बकायदा बजट तैयार करने की व्यवस्था हो और सरकारी आय व्यय को नियमित रूप से ऑडिट किया जाए। तीसरा सिद्धांत था, जब इन सुधारों द्वारा चीन की सरकार का संगठन सुव्यवस्थित हो जाए तो बाद में एक पार्लियामेंट की भी स्थापना की जाए, साथ ही चीन में एक मंत्रिपरिषद बनाई जाए जिसके हाथों में देश के कानून को क्रियान्वित करने का अधिकार हो। चौथा सिद्धांत था, प्रत्येक प्रांत में विधानसभाएं स्थापित की जाएं जिसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित हुआ करें। पार्लियामेंट की स्थापना से पूर्व प्रांतों में विधानसभाओं का संगठन कर लिया जाए और अन्य सब शासन सुधार भी इसी बीच में पूरे किए जाए ताकि 9 साल 1917 बीतने तक पेकिंग में पार्लियामेंट की स्थापना संभव हो सके। राजमाता द्वारा शासन सुधार की जिस नीति का प्रतिपादन किया गया था उसके अनुसार कार्य भी आरंभ कर दिए गए। सन 1909 में चीन में पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं की रचना की गई। इन सभाओं के सदस्य को चुनने के लिए वोट का अधिकार बहुत कम लोगों को दिया गया था। विधानसभाओं की शक्ति को भी बहुत मर्यादित रखा गया था। उन्हें अधिकार नहीं था कि सरकार के कार्यों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण रख सकें। उनका कार्य केवल यह था कि प्रांत के सूबेदार की ओर से जो विषय विचार के लिए पेश किए जाएं उन पर बहस करें और अपने विचारों से सूचित करें। मंचू सरकार की दृष्टि में इन विधानसभाओं का प्रयोजन केवल यह था कि इनके द्वारा जनता की सम्मति और विचारों का शासक वर्ग को परिचय मिलता रहे। पर चीन की जनता में इस समय इतनी अधिक जागृति हो चुकी थी और लोकतंत्र की भावना उनमें इतनी अधिक प्रबल हो गई थी कि प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों ने सरकार की आलोचना आरंभ कर दी और इस बात का प्रयत्न किया कि पाश्चात्य देशों की विधानसभाओं में के समान चीन की भी विधानसभाएं सरकार की शासन नीति और कार्यों पर नियंत्रण रखें। यही कारण है कि जब 3 साल बाद चीन में राज क्रांति हुई तो प्रांतीय विधानसभाओं के बहुसंख्यक सदस्यों ने इसका स्वागत किया। राजमाता त्सु हसी की मृत्यु। प्रांतों में विधानसभाओं की स्थापना से पूर्व ही सम्राट कुआंग त्सु की मृत्यु हो गई थी। यह राजमाता की द्वारा कैद में डाल दिए गए थे और राजप्रसाद में ही एक कैदी के समान जीवन व्यतीत कर रहे थे। असली शासन शक्ति राजमाता के हाथों में थी। क्वांग हसुक की मृत्यु के कुछ देर बाद ही तिशु हिसी महारानी राजमाता की भी मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व उन्होंने इस बात की व्यवस्था कर दी थी कि मंचू राज शासन पर अब कौन व्यक्ति आरूढ़ हो। नया सम्राट हु शुआन तुंग अभी बालक ही था, अतः शासन का कार्य व संचालन प्रिंस चुन के हाथों में आया, जो कि प्रतिभू यानी कि रीजेंट के तौर पर चीन के शासन करने के लिए प्रवृत्त और एकाधिकार दिया गया। मृत्यु से पूर्व सम्राट क्वांग हसु ने यह इच्छा प्रकट की थी कि युआन सिकाई को प्राण दंड दिया जाए। 1898 में युआन सिकाई ने राजमाता का पक्ष लेकर क्वांग हसु से जो विश्वासघात किया था, उसके कारण उसके हृदय में इस राजनीतिक के प्रति उग्र विद्वेष की भावना विद्यमान थी। प्रिंस चुन ने दिवंगत सम्राट की इच्छा को पूर्ण करने के लिए युआन सिकाई को प्राणदंड तो नहीं दिया, पर उसे पदच्युत अवश्य कर दिया। राष्ट्रीय महासभा। महारानी राजमाता ने जिन शासन सुधारों का सूत्रपात किया था, प्रिंस चुन ने उनको जारी रखा। 1909 में उसी के आदेश के अनुसार प्रांतों में विधानसभाओं की स्थापना हुई थी और अक्टूबर 1910 में संपूर्ण चीन के लिए प्रथम बार राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की गई। इसके आधे सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे और शेष आधे सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सरकार को आशा थी कि महासभा के सदस्य उग्र विचारों के न होकर मांचू राज सत्ता के समर्थक होंगे, पर नए विचार चीन में इतने अधिक प्रबल हो चुके थे कि राष्ट्रीय महासभा ने शासन सुधारों के लिए बड़ी प्रबलता के साथ मांग शुरू कर दी। उसने मांग की कि चीन में जल्दी से जल्दी नए शासन विधान का निर्माण किया जाए और वहां ऐसी पार्लियामेंट की स्थापना हो जो सरकार पर नियंत्रण रख सके, मंत्रिमंडल पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी हो और वह तभी तक अपने पद पर रह सके जब तक कि पार्लियामेंट के बहुसंख्यक सदस्यों का विश्वास उसे प्राप्त रहे। राष्ट्रीय महासभा ने सरकार के कार्यों और नीति की आलोचना करने में भी संकोच नहीं किया। यदि इस समय चीन की मंचू सरकार बुद्धिमत्ता से कार्य करती तो वहां राज्य क्रांति की आवश्यकता न होती। यूरोप के विविध राज्यों और जापान के समान वहां भी वैध राजसत्ता का विकास हो जाता और मंचू राजवंश देर तक चीन के राज सिंहासन पर आरूढ़ रह सकता। पर पेकिंग की सरकार को राष्ट्रीय महासभा का रुख जरा भी पसंद नहीं था। उसने जनता की भावनाओं की उपेक्षा की। इसी का यह परिणाम हुआ कि चीन में वैध राजसत्ता का विकास न होकर रिपब्लिक की स्थापना हुई, जिसे हम चीनी राज्य क्रांति 1911 के रूप में जानते हैं।